छह प्रकृति चित्रण। मनुष्य का संबंध प्रकृति के साथ युगों से है एवं युगों तक रहेगा। प्रकृति मनुष्य की चीर सहचरी है। प्रातःकाल लालिमा का संचार करते हुए सूर्य का उदित होना, गुलाबी संध्या से जल थल का रंग जाना, सारी सृष्टि का चांदनी से मानो स्नान करना आदि प्राकृतिक दृश्य हमें प्रतिदिन दिखाई देते हैं एवं हम नित्य नवीनता एवं आकर्षक का दर्शन करते हैं। कवियों ने अपने साहित्य में प्रकृति के प्रत्येक कोमल एवं भयावह दोनों रूपों का वर्णन किया है। वाल्मीकि एवं कालिदास का प्रकृति वर्णन बेजोड़ है। महाकवि बाण भी प्रकृति चित्रण में पूर्ण सफल रहे हैं। उन्होंने भी अत्यंत पूर्ववर्ती कवियों की भांति प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूप में वर्णन किया है। उनकी कादंबरी के पूर्व भाग में ही प्राकृतिक दृश्यों की कई सुंदर चित्र हैं। हर्षचरित में भी अवसर अनुकूल प्रकृति का चित्रण हुआ है, किंतु अपने युग की परंपरा के अनुकूल ही बाण को अपने गद्य से को अलंकृत करने का विशेष आग्रह है, जिनके कारण उनके प्रकृति चित्र उतने सहज सुंदर नहीं दिखाई पड़ते जितने कि वाल्मीकि या कालिदास के काव्यों में दिख पड़ते हैं। बाण ने प्रकृति के कोमल एवं भयावह दोनों रूपों का चित्रण किया है। जहाँ सूर्योदय, चंद्रोदय, संध्या आदि के चित्रणों में प्रकृति का सुंदर रूप अंकित है, वहीं कादंबरी के विंध्याटवी वर्णन जैसे चित्रों में प्रकृति के भीषण रूप की भी सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। विंध्याटवी का यह चित्र दर्शनीय है। गिरितनयेव स्थाणुसंगता मृगपति सेविता च जानकी व प्रसूत कुशलवा निशाचर परिग्रहिता च कामनी व चंदन मृग मद रीपलवाहिनी रुचिरा गुरु तिलक भूषिता च सोत्कंठे व विविध पल्लवा नील समदना च। कादंबरी कथामुख से पृष्ठ संख्या 27। बाण के प्रकृति चित्रण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे प्राकृतिक दृश्यों को वातावरण अथवा देश काल के अनुरूप ही चित्रित करते हैं, जिसमें वर्णन में स्वाभाविकता का समावेश हो जाता है। उदाहरण के लिए कादंबरी के कथामुख में वर्णित जबाली के आश्रम में संध्या वर्णन का चित्र, क्वापि विहत्यम दिवसात वसाने लोहित तारा का तपोवन धेनुरीव कपिला परिवर्तमाना संध्या तपोर धनरई दृश्यत अचीर प्रोसिते सवितरी शोक विधुरा कमल मुकुल मंडल लुधारिणी हंससीत दुकूल परिधाना मृडाल धवल यज्ञोपवीतिनी लघुकर मंडला छयव लहमूह द्वंती कमिलिनी दिनपति स मागम व्रत विचारत। कादंबरी कथामुख से महर्षि जबाली के आश्रम का बड़ा ही सात्विक एवं मनोरम वर्णन है, जिसे पढ़कर किसी पुरुष का हृदय तपोवन की भव्य मूर्ति से प्रभावित नहीं होगा। तथा ही यत्र च महाभारते शुक निबध पुराणे वायु प्रलीपतम वयम परिणामे द्विजपतनम उपवन चंदनेशु जाड्यम अग्निनाम भूमि तत्वम एकाणाम गीत श्रवण व्यसनम शिखंडीनाम नृत्य पक्षपात भुजंगमानाम भोगः श्रीफलाभिलाषः मूलानाम धोगतिः। कादंबरी कथामुख। अन्यत्र भी कई दर्शनीय स्थल हैं जो तपोवन के शांत एवं अहिंसक वातावरण की सृष्टि करते हैं, जैसे परचित शाखा मृग कराट कृष्टयति निष्कास्यमान प्रवेश्यमान जरंदंत तापस। कादंबरी कथामुख। बाण ने अपने प्रकृति चित्रण को अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा एवं सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के बल पर अत्यंत आकर्षक रूप प्रदान किया है। अलंकार विधान द्वारा उसमें और अधिक चमत्कार उत्पन्न हो गया है, किंतु श्लेष और विरोध आदि अलंकारों के प्रयोग ने प्रकृति चित्रण के आकर्षण को कम किया है, किंतु यह तात्कालिक साहित्यिक वातावरण का प्रभाव है, अतः हम इसके लिए कवि पर पूर्णतया दोषारोपण नहीं कर सकते।